अभिमन्यु की थ्रो की हुई पार्टी जोरों पर थी। अभिमन्यु ने इशिका के जिंदा होने की सच्चाई भी सबको बता दी थी। एक बार के लिए सब हैरान हुए, पर अभिमन्यु ने मामले को संभाल लिया था। अभिमन्यु इशिका के साथ बिजी था। इस बीच अर्पित और आदित्य की नज़रें उन पर टिकी हुई थीं। वे वहां अभिमन्यु के लिए आए थे, लेकिन इशिका उन्हें बिना किसी मेहनत के मिल गई थी। पर मुसीबत ये थी कि वे दोनों में से एक को ही वहां से ले जा सकते थे। अभिमन्यु और इशिका में से किसी एक को चुनना वाकई उनके लिए मुश्किल था। काफी सोचने के बाद आदित्य ने अभिमन्यु के बजाय इशिका को वहां से ले जाने का फैसला किया। अर्पित भी उससे सहमत था। उसने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से कहा, मैं भी उसी को सिलेक्ट करने वाला था, क्योंकि वो केशव सिंघानिया की बेटी हैं। चलो अब यहां से चलते हैं, उसे बाहर निकलने का टाइम आ गया है। आदित्य ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और अपने सभी आदमियों को इशिका के पीछे लगा दिया था। उनके लिए इशिका को पहचानना मुश्किल नहीं था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही अभिमन्यु ने सबके सामने इशिका को फिर से इंट्रोड्यूस करवाया था। वहीं उनसे अलग इशिका केशव सिंघानिया के सामने खड़ी थी। इशिका और केशव जब रेस्टोरेंट में मिले थे, तब उन दोनों की ही पहचान एक दूसरे से छुपी हुई थी। इशिका के लिए वे उसके हैंडसम अंकल थे, ना कि वो मिस्टर सिंघानिया जिसे वो मिलने से मना कर रही थी। तो वहीं मिस्टर सिंघानिया के लिए वो एक नॉर्मल सी लड़की थी, जिनकी शक्ल न जाने क्यों उनकी माँ से मिलती थी, ना कि राधिका मर्चेंट की बेटी। इशिका ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से कहा, हेलो मिस्टर सिंघानिया, एक बार फिर आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मिसेज राजवंश, तो वो तुम ही थी जो आदर्श के घर पर राधिका को बचाने के लिए बार बार जा रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा भी, लेकिन मास्क के पीछे मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा था, केशव ने जवाब दिया। अचानक केशव को याद आया कि वे एक दूसरे से इस बारे में बहस कर रहे थे कि किसकी माँ बेहतर है। केशव ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारा कहना सही है, तुम्हारी माँ सच में काफी अलग और खूबसूरत है, लेकिन मेरी माँ भी किसी मामले में कम नहीं है। एक्चुअली मेरी माँ की, इससे पहले कि केशव इशिका को इस बारे में बात बता पाते कि इशिका की शक्ल उनकी माँ से मिलती है, तभी अचानक वेन्यू का पावर कट हो गया था और चारों तरफ अंधेरा हो गया। इस तरह की बड़ी पार्टी में ऐसा एक्सीडेंट होना काफी अजीब था, क्योंकि होटल लग्जरियस था और इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही कट नहीं हो सकती थी। अभिमन्यु और इशिका इस बारे में जानते थे कि अर्पित मर्चेंट वहां पार्टी में मौजूद है। ऊपर से अभिमन्यु ने इशिका को भी सबके सामने ला दिया था। पार्टी में लाइट जाने से लोग आपस में फुसफुसाने लगे। अभिमन्यु ने जल्दी से अपने मोबाइल की लाइट ऑन की तो उसने देखा इशिका उसके पास नहीं थी। इशिका इशिका तुम कहाँ हो, अभिमन्यु ने घबराकर तेज आवाज में पूछा। लोगों की आवाजों में उसकी आवाज दबकर रह गई थी, लेकिन पास खड़े केशव ने अभिमन्यु की बात सुनी तो वो जल्दी से बोला, तुम घबरा क्यों रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी उसके ऊपर कोई खतरा है। सारा मामला तुरंत ही समझ में आते ही केशव ने हैरानी से आंखें बड़ी करके कहा, डैम, तुम इस बारे में पहले ही जानते थे, अभिमन्यु तुम्हें सब कुछ जानते हुए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। केशव गुस्से में बड़बड़ाते रहे जबकि अभिमन्यु इशिका को ढूंढने के लिए बाहर की तरफ जाने लगा। एक बात तो साफ थी, अगर कोई इशिका को वहां से ले जाने के लिए आया है तो वो सीधे बाहर जाएगा। केशव भी तेज कदमों से चलकर उनके पीछे जाने लगे। बाहर की तरफ जाते हुए अभिमन्यु ने खुद से बड़बड़ाकर कहा, ओ गॉड, सब गड़बड़ हो गई, जब वे लोग मेरे लिए यहाँ आए थे तो फिर वे इशिका को लेकर क्यों जा रहे हैं। अभिमन्यु बाहर पहुंचा तो लाइट बिल्कुल सही थी और अगले ही मोमेंट में लाइट वापस आ गई थी। आसपास अभिमन्यु का एक भी गार्ड मौजूद नहीं था। उसे चौपर की आवाज सुनाई दी तो वो हेलीपैड की तरफ दौड़कर गया। वे लोग इशिका को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने लगे थे, हालांकि इस सब में इशिका काफी अच्छे से फाइट बैक कर रही थी। मैं इशिका को राधिका सिंघानिया की तरह गायब कभी नहीं होने दे सकता, अभिमन्यु ने खुद से कहा और दौड़कर उनके पास जाने लगा। कुछ ही देर में वो वहां पर पहुंच चुके थे। अभिमन्यु के वहां आने से इशिका को काफी सपोर्ट मिल रहा था। वे दोनों फाइटिंग में अच्छे थे और दोनों ने साथ मिलकर गार्ड्स को मात भी दे दी थी। इतने में अर्पित और आदित्य भी वहां पर पहुंच गए थे। उन्होंने इशिका और अभिमन्यु के ऊपर गन पॉइंट किया। अर्पित ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, पहले तो लगा था सिर्फ इसे ही यहां से लेकर जाएंगे, पर तुम खुद यहां चलकर आ गए हो अभिमन्यु राजवंश, आई एम सॉरी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में तुम्हें सब बता दिया होगा, अब फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, चुपचाप अंदर चलो। ऐसा नहीं था कि इशिका और अभिमन्यु कमजोर थे या वे गन पॉइंट से घबरा गए थे। इशिका और अभिमन्यु ने एक दूसरे की आंखों में देखा, मानो वे इस लम्हे के लिए पहले ही तैयार थे और सब कुछ उन्होंने इसीलिए प्लान किया था। उन्होंने बिना किसी सवाल या लड़ाई के अपने कदम अंदर बढ़ाना शुरू कर दिए थे। उनके ऐसा करने पर आदित्य और अर्पित थोड़ा हैरान हुए। आदित्य ने अर्पित की तरफ देखकर चौंकते हुए पूछा, तुम्हें सब कुछ अजीब नहीं लग रहा, पिछले 10 मिनट में इन्होंने हमारे 20 आदमियों को अच्छा खासा सबक सिखा दिया है, फिर ये हम दोनों से डरकर अंदर कैसे चले गए, हमें इस बारे में सोचना ही क्यों है, आप बाद में आ जाना, मैं इन्हें लेकर निकलता हूँ, अर्पित ने जवाब दिया और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए थे। अर्पित भले ही अपने पापा के बिजनेस और इन सब एक्सपेरिमेंट को कितना भी सीरियसली क्यों ना ले, लेकिन उसके सोचने का नजरिया इतना तेज नहीं था जितना आदित्य का था।
आदित्य ने मन ही मन कहा, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ। हमने इन दोनों को नहीं ढूंढा बल्कि ये दोनों खुद हमारे तक चल कर आए हैं। इसका मतलब इन्हें राधिका के पास जाना है। सीधे सीधे बोल दिया होता ये सब मारामारी करने की क्या जरूरत थी। कहीं इनके इरादे कुछ और तो नहीं। आदित्य सब समझ गया था। उसने अर्पित के सामने उस वक्त कुछ भी कहना सही नहीं समझा। अर्पित ने उसे दूसरे चौपर में थोड़े टाइम रुक कर आने को कहा था लेकिन फिर भी वो उसे चौपर के अंदर जाने लगा। वहीं पृथ्वी दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया था। अभिमन्यु ने बिना किसी सिक्योरिटी के यशिका के साथ मर्चेंट फैमिली के पास जाने का सोचा था। हालांकि इस सब में काफी खतरा था पर अगर वे किसी भी सिक्योरिटी के साथ जाते तो मर्चेंट फैमिली उन्हें तुरंत पकड़ लेती। ऐसे हालातों में वे कभी राधिका तक नहीं पहुंच पाते। कुछ ही देर में चौपर उड़ान भर चुका था। उनके जाते ही पृथ्वी अंदर आया और उसने सबसे यही कहा कि अभिमन्यु और ऋषिका वहां से अपने हनीमून के लिए निकल चुके हैं। अभिमन्यु ने कुछ ही देर में अपने पीछे से सब कुछ कैसे संभालना है उसकी तैयारी कर ली थी। वहीं अभिमन्यु के अचानक इस तरह जाने पर उर्वशी मन ही मन काफी खुश हो रही थी। उसने नक्श और नकुल से कहा, अभिमन्यु कम से कम एक महीने के लिए तो जरूर गया होगा। ये हमारे पास अच्छा मौका है जब हम फिर से राजवंश एम्पायर पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। उसे अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने दो। जब वो वापस आएगा तब उसका सब कुछ उजड़ चुका होगा। हाँ, मौका काफी अच्छा है और हमें इसका फायदा भी उठाना चाहिए, नकुल ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा। नकुल ने तो हाँ कह दी थी लेकिन नक्श वहां चुपचाप खड़ा था। उर्वशी ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो नक्श इस वक्त गुस्से में भौहें सिकुड़कर खड़ा था। नक्श की आंखें गुस्से से जल रही थी। उसने मन ही मन कहा, तुम अभिमन्यु चाचू के साथ अकेले कहीं भी कैसे जा सकती हो ऋषिका, वो भी हनीमून पर? डिस्गस्टिंग, भाड़ में जाइए बिजनेस और बाकी सब, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे बात करनी है।
नक्श अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उर्वशी ने उसका हाथ पकड़ा तो नक्श ख्यालों से बाहर आया। उर्वशी ने उससे पूछा, मैं तुमसे कुछ कहा है? तुम क्या सोच रहे हो? देखो, कोई भी उल्टा सीधा ख्याल अपने मन में मत लेकर आना। ये हमारे पास अच्छा मौका है और ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे पास पैसा, प्रॉपर्टी और सीईओ की पोजीशन होगी तो वो लड़की खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। उर्वशी समझ गई थी कि नक्श के दिल में क्या चल रहा होगा। नक्श ने उसका हाथ अपने हाथ से अलग किया और दांत पीसते हुए कहा, वो ऐसी लड़की नहीं है और इस बार मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। इतना कहकर नक्श वहां से जाने लगा। वो सीधा पृथ्वी के पास पहुंचा। उसने पृथ्वी के पास जाकर गुस्से में पूछा, चाचू कहाँ गए हैं? मुझे उनसे बात करनी है। मुझे लोकेशन बता दो, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी को भी बताने से मना किया है। मैं नहीं चाहते कि उनके और उनकी वाइफ के प्राइवेट स्पेस में कोई भी दखल दे, पृथ्वी ने सिर हिलाकर जवाब दिया। हालांकि अभिमन्यु ने ऐसा कुछ भी कहने को नहीं कहा था पर उसने जानबूझकर ये सब कहा ताकि नक्श ये समझ जाए कि अब ऋषिका के पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मत बताओ, मैं खुद ढूंढ लूंगा। टिकट बुक करने के लिए तुमने राजवंश एम्पायर के ही अकाउंट को यूज किया होगा, नक्श ने जवाब दिया और वहां से चला गया। उन सबसे अलग केशव वहां चुपचाप खड़े थे। वे नहीं जानते थे अभिमन्यु ऋषिका के साथ अचानक कहाँ चला गया, पर एक बात साफ थी, वो हनीमून पर तो बिल्कुल नहीं गया था। केशव हैरान परेशान वहां खड़ा था तभी अंजलि उसके पास आई। मिस्टर सिंघानिया, क्या अभिमन्यु ने आपको बताया कि वो कहाँ जा रहा है? थोड़ी देर पहले वो आपसे बात कर रहा था। लाइट जाने के बाद जब अभिमन्यु बाहर गया तब आप उसके पीछे गए थे? अंजलि ने बात को घुमाते हुए पूछा, जबकि वो अच्छे से जानती थी कि पार्टी से अर्पित और आदित्य गायब थे। इसका मतलब वे दोनों ही उसे लेकर गए थे। मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। और आप कब से अभिमन्यु की लाइफ में इंटरेस्ट लेने लग गई मिस चौहान? जाकर अपना काम संभालिए, आपको वही सूट करता है, केशव ने काफी रूडली जवाब दिया और वहां से जाने लगा। तभी अंजलि ने पीछे से तेज आवाज में कहा, मर्चेंट फैमिली वापस आ गई है मिस्टर सिंघानिया। बोलते हुए वो केशव के पास आई और धीमी आवाज में बोली, आप जानते हैं ना वे क्या काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभिमन्यु जब पैदा होने वाला था तब उस पर भी किसी तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ था। वो लड़की राधिका सिंघानिया की बेटी है, इसका मतलब राधिका के ऊपर भी कोई एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। जरूर वे उन्हें लेकर गए हैं। केशव ने अंजलि की बात सुनी तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मर्चेंट फैमिली, जिसका नामो निशान तक मिट चुका था, वो अचानक वापस कैसे आ सकती थी? केशव ने अंजलि की बात का कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत वहां से बाहर चले गए। उनके चेहरे पर डर के भाव थे। मर्चेंट फैमिली का वापस इस तरह सामने आना एक अच्छी खबर नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ ऋषिका और अभिमन्यु एक अनजान आइलैंड के लंबे सफर पर निकल चुके थे। पहले वे कमरे में दोनों अलग अलग गार्डों की सिक्योरिटी के बीच बैठे हुए थे। इस बीच आदित्य वहां आया और उसने सारे गार्ड्स को इशारे से वहां से जाने को कहा। अब कमरे में ऋषिका और अभिमन्यु के अलावा सिर्फ आदित्य ही बचा था जो उन दोनों को अजीब नजरों से देख रहा था। अर्पित के सामने आदित्य चुप था लेकिन अब वो अकेले में बात करने के बहाने उनसे उनके प्लान के बारे में जानने के लिए आया था। उसे डर था कि कहीं ये दोनों उनके लिए कोई खतरा साबित ना हो जाए। आदित्य ने अपनी गन लोड की और अभिमन्यु की तरफ गन को पॉइंट करते हुए कहा, तुम दोनों भले ही हमारे लिए कितने ही काम के क्यों ना हो लेकिन तुम्हारे इरादे देखकर साफ है कि तुम किसी मकसद से हमारे साथ आ रहे हो। इससे पहले कि मर्चेंट फैमिली तुम्हें नुकसान पहुंचाए मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा।